एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल,
बराक ओबामा की द ओडेसिटी ऑफ होप 2006 में आई थी ये किताब।
हाँ, पूरा नाम था द ओडेसिटी ऑफ होप, Thoughts on Reclaiming the American Dream।
सही, यानी आशा का साहस, अमेरिकी सपने को पुनः प्राप्त करने पर विचार।
और ये तब की बात है जब ओबामा एक युवा सेनेटर थे इलिनॉइस से, मतलब राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले का दौर।
बिल्कुल, और उस समय अमेरिका में माहौल काफी बटा हुआ था, राजनीतिक तौर पर गहरी खाई थी और एक तरह की निराशा सी फैली हुई थी। तो ऐसे में ये किताब एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई थी।
ओबामा का जो मुख्य तर्क था इसमें वो ये कि देखिए, ऊपर ऊपर भले ही कितने मतभेद दिखें, कितना शोर शराबा हो राजनीति का,
हाँ, लेकिन अंदर से ज्यादातर अमरीकी एक ही तरह के मूल्यों, एक ही तरह की आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं।
ये बात तो आज भी शायद पहले से कहीं ज्यादा मौजूं लगती है, नहीं?
माँ बिल्कुल, और यही सवाल ये किताब उठाती है, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसी राजनीति हो सकती है जो तर्क पर, सहानुभूति पर और साझा जमीन की तलाश पर टिकी हो?
और ओबामा खुद, उनकी अपनी कहानी उन्हें इस पर बात करने के लिए एक अलग ही विश्वसनीयता देती है ना?
हाँ जाहिर है, उनके पिता केन्या से, माँ कैंसस से, एक श्वेत अमरीकी। उनका बचपन हवाई में बीता, इंडोनेशिया में भी रहे कुछ साल, तो ये जो अनुभव थे अलग अलग संस्कृतियों के, इसने उन्हें अमरीकी पहचान की जटिलताओं को कई कोणों से देखने का मौका दिया।
फिर शिकागो में सामुदायिक आयोजक के तौर पर उनका काम,
हाँ वो भी बहुत अहम था।
फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल, वहां लॉ रिव्यू के पहले अफ्रीकी अमेरिकी अध्यक्ष बनना, फिर संवैधानिक कानून पढ़ाना।
ये सब उन्हें अमेरिकी व्यवस्था को, मतलब जमीन से लेकर सत्ता के गलियारों तक, कई नजरियों से समझने का अनुभव देता है।
उनकी पहली किताब थी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, वो तो काफी व्यक्तिगत थी।
हाँ, वो पहचान की तलाश थी, अपनी जोड़ों को समझने की कोशिश, लेकिन द ऑडेसिटी ऑफ होप ये उससे अलग है। ये एक तरह का राजनीतिक घोषणा पत्र है, कह सकते हैं।
अच्छा कैसे?
ये उनके निजी अनुभवों को, देश के सामने जो बड़ी चुनौतियां थीं, राजनीतिक विभाजन, नस्लीय तनाव, आर्थिक मुद्दे, उनसे जोड़ती है। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक विजन पेश करने की कोशिश है।
तो चलिए ओबामा के उस सफर को थोड़ा और समझते हैं जिसने इस किताब के विचारों को आकार दिया। उनकी शुरुआती साल तो काफी विविध रहे।
हाँ, जैसा हमने कहा, मिश्रित विरासत, अलग अलग जगहों पर रहना, इसने उन्हें पहचान की जटिलताओं और बहुसांस्कृतिक नजरिए की समझ दी।
और फिर शिकागो, वो सामुदायिक आयोजक वाला दौर, उसने क्या सिखाया?
वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने उन्हें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्षों को बहुत करीब से दिखाया, मतलब लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतें, व्यवस्था की कमियां, ये सब उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा।
किताबी ज्ञान से अलग जमीनी हकीकत।
बिल्कुल, फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल गए, लॉ रिव्यू के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटी में एक दशक से ज्यादा पढ़ाया संवैधानिक कानून।
इसका क्या असर हुआ होगा उनके विचारों पर?
इससे उन्हें अमेरिकी लोकतंत्र की जो कानूनी और दार्शनिक बुनियाद है, उसकी गहरी समझ मिली। उन्हें यह समझ आया कि संविधान सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि असहमतियों के बीच बातचीत और सहमति बनाने का एक ढांचा है,
अच्छा,
और ये सोच उनकी किताब में साफ दिखती है।
और फिर राजनीति में कदम रखा, पहले इलिनॉय स्टेट सीनेट, फिर अमेरिकन सीनेट। यहां तो असलियत से सामना हुआ होगा।
हाँ बिल्कुल, यही उन्होंने राजनीति की रोजमर्रा की खींचतान, समझौतों की जरूरत, विचारधाराओं का टकराव, ये सब करीब से देखा। और इसी दौरान 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने एक भाषण दिया।
हाँ, वो भाषण तो बहुत मशहूर हुआ था।
बहुत, वही भाषण जिसने उन्हें एकदम से राष्ट्रीय मंच पर लाखड़ा किया। उनका वो संदेश कि कोई लिबरल अमेरिका या कंजर्वेटिव अमेरिका नहीं है, बल्कि एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है।
एकता का
हाँ,
संदेश।
और ये किताब द ऑडेसिटी ऑफ होप एक तरह से उसी भाषण से उपजे सवालों का जवाब देने की कोशिश है, उस एकता के विजन को और विस्तार देने, उसे एक ठोस राजनीतिक दर्शन में ढालने का प्रयास है।
तो ये किताब सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि एक राजनीतिक विचार का खाका थी।
निश्चित रूप से, ये एकता, सहानुभूति और व्यावहारिकता पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन पेश करती थी। इसने ओबामा को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो मतभेदों के बीच पुल बनाने की बात कर रहा था, और इसने उस राजनीतिक आंदोलन की, कह सकते हैं, बौद्धिक नींव रखी जिसका उन्होंने बाद में नेतृत्व किया।
तो फिर इस किताब का केंद्रीय दर्शन क्या है? इसके मूल में कौन से मूल्य हैं?
सबसे पहला और सबसे जरूरी है साझा जमीन की तलाश, कॉमन ग्राउंड खोजना। ओबामा का ये पक्का मानना था और है कि राजनीतिक मतभेदों के नीचे ज्यादातर अमरीकी बुनियादी मूल्यों पर सहमत हैं।
जैसे कि?
जैसे परिवार का महत्व, मेहनत की इज्जत, समुदाय की भावना, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की चाह। वो कहते हैं कि हमारी बातचीत यहाँ से शुरू होनी चाहिए।
लेकिन आज के माहौल में ये साझा जमीन ढूंढना मुश्किल लगता है, तो रास्ता क्या बताया उन्होंने?
यहीं पर सहानुभूति और संवाद का महत्व आता है, एम्पथी और डायलॉग।
सहानुभूति मतलब हमदर्दी?
हमदर्दी से थोड़ा ज्यादा, मतलब कोशिश करना कि आप दूसरे के नजरिए को समझें, भले ही आप उससे सहमत न हो।
अच्छा।
दुनिया को उनकी आंखों से देखने की कोशिश करना, उनकी चिंताओं को समझना, ओबामा के लिए ये कड़वी राजनीतिक बहसों का सबसे बड़ा इलाज है।
लेकिन क्या ये व्यावहारिक है राजनीति में?
ये मुश्किल है, लेकिन वो इसे जरूरी मानते हैं। और यहीं उनकी तीसरी बात आती है, वैचारिक शुद्धता पर व्यावहारिकता को तरजीह देना।
मतलब
सिर्फ अपनी विचारधारा पर अड़े रहने के बजाय इस पर ध्यान देना कि असल में क्या काम करता है, कौन सी नीतियां नतीजे लाती हैं।
अच्छा,
प्रैग्मैटिज्म।
हाँ,
प्रैग्मैटिज्म, सबूतों के आधार पर नीतियां बनाना और जरूरत पड़ने पर प्रगति के लिए समझौते करना। कठोर वामपंथी या दक्षिणपंथी हठधर्मिता से बचना।
किताब में आस्था और मूल्यों पर भी काफी जोर है, मैंने सुना है।
हाँ बिल्कुल, वो मूल्यों और आस्था की भाषा को फिर से अपनाने की वकालत करते हैं।
ये थोड़ा समझाएंगे, क्योंकि ये विषय तो अक्सर और विभाजन पैदा करता है।
उनका तर्क है कि नैतिकता, परिवार, जिम्मेदारी जैसे शब्द सिर्फ रूढ़िवादियों के लिए क्यों हों? प्रगतिशील आदर्श भी अमेरिका की नैतिक और धार्मिक परंपराओं में अपनी जड़ें रखते हैं। आस्था नैतिक बल का स्रोत हो सकती है, लेकिन इसे सार्वजनिक बहस में ऐसी भाषा में रखना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो, जो बहुलवाद का सम्मान करे।
और अंत में वो शीर्षक, आशा का साहस।
हाँ, ये उनका अंतिम संदेश है। आशा एक सक्रिय, सचेत चुनाव है।
सक्रिय चुनाव मतलब?
मतलब ये कोई भोलापन नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा, ना ही ये सिर्फ एक भावना है। ये मुश्किलों और अनिश्चितता के बावजूद काम करने का, आगे बढ़ने का साहस है। ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है अगर हम कोशिश करें। एक तरह का अनुशासन है ये।
ये तो हुए मूल सिद्धांत, बड़े दिलचस्प है। लेकिन किताब में ऐसे कौन से तीन खास विचार या तर्क हैं जो पाठक की सोच पर गहरा असर डाल सकते हैं? मतलब तीन निर्णायक मोड़ क्या हैं इस किताब के?
हाँ जरूर। पहला मेरे ख्याल से है ध्रुवीकरण की बनावटी प्रकृति को उजागर करना।
बनावटी प्रकृति मतलब ये असली नहीं है?
ओबामा तर्क देते हैं, खासकर पहले अध्याय में, कि जो राजनीतिक बंटवारा हमें इतना गहरा और असली लगता है, वो काफी हद तक मीडिया और राजनीतिक मशीनरी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है।
अच्छा।
वो अपने सीनेट के अनुभव बताते हैं कि कैसे बंद दरवाजों के पीछे नेता अक्सर सहयोग करते हैं, मुद्दों पर मिलकर काम करते हैं, लेकिन बाहर जनता के सामने एकदम कट्टर दुश्मन नजर आते हैं।
अरे,
तो ये समझना कि ये ध्रुवीकरण कितना बनावटी हो सकता है, ये एक बड़ा मोड़ है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम शायद असली मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक नाटक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और ये हमें दुश्मनों से लड़ने के बजाय साझा हितों को खोजने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, दूसरा मोड़।
दूसरा है मूल्यों और आस्था पर प्रगतिशील दावेदारी। ये बात हमने थोड़ी पहले भी की थी, अध्याय 2 और 6 में ये विस्तार से हैं।
हाँ,
ये तर्क कि नैतिकता और आस्था की भाषा पर सिर्फ रूढ़िवादियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ओबामा ने दिखाया कि कैसे प्रगतिशील नीतियां भी पारंपरिक मूल्यों जैसे परिवार, जिम्मेदारी, समुदाय का समर्थन करती हैं, और उन्होंने आस्था को सामाजिक न्याय के लिए एक प्रेरणा के तौर पर पेश किया, बशर्ते उसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की भाषा में रखा जाए। इसने उस समय की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष बनाम धार्मिक विभाजन को चुनौती दी। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव था।
हाँ, ये उस समय के लिए काफी नई सोच थी। और तीसरा?
तीसरा मोड़ है खुद आशा के साहस की सक्रिय परिभाषा।
वही जो आपने कहा, सक्रिय चुनाव।
हाँ, जैसा किताब की प्रस्तावना, उपसंहार और उनके भाषणों में झलकता है, ये आशा कोई निष्क्रिय इच्छा या भोलापन नहीं है। ये मुश्किलों के सामने डटे रहने का, कर्म करने का एक साहसी, सचेत विकल्प है।
इसका क्या असर होता है सोच पर?
ये राजनीति में हमारी भागीदारी को देखने का नजरिया बदलता है। अगर हम सोचते हैं कि सब बेपार हैं, तो हम हाथ खींच लेते हैं।
सही बात है।
लेकिन अगर आशा एक सचेत चुनाव है, एक अनुशासन है, तो फिर राजनीति में हिस्सा लेना, खासकर तब जब ये मुश्किल हो, वो व्यर्थ नहीं लगता। वो लोकतंत्र में हमारे विश्वास का एक जरूरी काम बन जाता है। शायद 2004 के भाषण की सफलता ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि इस आशा को और स्पष्ट करने की जरूरत है।
ये तो बड़े गहरे राजनीतिक और दार्शनिक विचार हैं, लेकिन हम आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इनसे क्या सीख सकते हैं? क्या मानवीय सबक हैं इसमें?
बहुत सारे हैं असल में। सबसे पहले तो वो जो साझा जमीन खोजने का संघर्ष है,
हाँ,
वो हम सब अपनी निजी जिंदगी में भी तो करते हैं। परिवारों में, दोस्तों के बीच, काम की जगह पर असहमतियां होती हैं, हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ये अनुभव राजनीतिक बंटवारे जैसा ही तो है।
सही कहा। और वो सहानुभूति वाली बात,
वो तो और भी ज्यादा लागू होती है, सिर्फ राजनीति में नहीं, हर रिश्ते में। दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना, उनकी जगह खुद को रखकर सोचना, ये कितनी जरूरी चीज है असहमतियों को सुलझाने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए।
बिल्कुल।
किताब हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक बुनियादी मानवीय गुण है।
किताब आदर्शों और व्यवहारिकता के संतुलन की भी बात करती है। ये तो हम सब महसूस करते हैं रोज।
हाँ बिल्कुल, अपने उसूलों पर टिके रहना और साथ ही दुनिया की हकीकतों से समझौता करना, ये खींचतान तो चलती रहती है। ओबामा राजनीति का जो वर्णन करते हैं, खासकर अध्याय 4 में, वो इसी तनाव को दिखाता है, कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे व्यवहारिक कदमों से हासिल किया जाए।
और निराशावाद बनाम आशावाद का सवाल,
ये भी एक बहुत ही मानवीय अनुभव है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हमें लगता है सब खत्म।
हाँ,
सवाल ये है कि क्या हम निराशा को हावी होने दें या चुनौतियों के बावजूद उम्मीद बनाए रखें। किताब हमें आशा को एक अनुशासन की तरह देखने को कहती है, जिसे चुनना पड़ता है, साधना पड़ता है।
और एक बात और आपने बताई थी, परिवार पर उनका चिंतन।
हाँ, अध्याय 9 में वो हमें याद दिलाता है कि राजनीति का आखिरी मकसद क्या है, लोग, परिवार, आने वाली पीढ़ियां। वो अपने काम की मांगों और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने के संघर्षों के बारे में लिखते हैं। ये हम सबके अपने संघर्षों से जुड़ता है।
तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर श्रोताओं के लिए तीन सबसे अहम बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
जरूर, मेरे विचार में तीन मुख्य बातें ये हो सकती हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। सच्ची प्रगति और आपसी जुड़ाव की जड़ में सहानुभूति है, दूसरों की नज़र से दुनिया को देखने की क्षमता, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश। ये मतभेदों को पाटने और वास्तविक मानवीय संबंध बनाने के लिए अनिवार्य है।
सहानुभूति, ठीक है। दूसरी?
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। अमेरिकी संविधान या शायद कोई भी अच्छा लोकतंत्र असल में अंतिम जवाबों का कोई संग्रह नहीं है, बल्कि असहमतियों को संभालने और लगातार बातचीत के जरिए सहमति तक पहुंचने का एक ढांचा है, एक प्रक्रिया है। इसकी असली खूबी इसी प्रक्रिया में है जो विविधता के बीच एकता साधती है।
ये भी बहुत अहम बात है। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख।
तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। आशा कोई निष्क्रिय इंतजार या भोलापन नहीं, बल्कि एक सक्रिय, हिम्मत भरा चुनाव है। ये सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक जरूरी अनुशासन है। मुश्किल सबूतों के बावजूद बेहतरी में यकीन रखना और उस यकीन के आधार पर काम करते रहना, यही आशा का साहस है।
बहुत खूब। सहानुभूति, संवाद की प्रक्रिया और सक्रिय आशा।
हाँ, संक्षेप में यही।
और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पुस्तक के लिखे जाने के लगभग 2 दशक बाद आज की दुनिया में क्या बंटवारे पर काबू पाने और साझा मूल्यों को खोजने की ये आशा उतनी ही जरूरी है या शायद पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है?
ये सवाल यकीनन सोचने लायक है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रे फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।